हार्दिक स्वागत। तो आप सब पढ़ाई कर रहे हो समय, हम भी अभी और स्टूडेंट्स, तो आप सबका हार्दिक स्वागत अंतर्राष्ट्रीय भावना संघ का। मूल उद्देश्य यह है कि भगवान ने संदेश दिया जाए समाज के सुधार के लिए, उद्धार के लिए। अगर समाज में किसी चीज की कमी है आज, तो एक ही विषय की कमी है, वो क्या है? अध्यात्मिक ज्ञान। आज आप देखते हो कि एक तरह से भौतिक क्लेश तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी देखते हो कि यहाँ लोगों का जो चरित्र है गिरते जा रहा है या सुधर रहा है। इन सब कार्यों का कारण क्या है? कारण ये है कि हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। प्रहलाद महाराज क्योंकि महान संत हैं, और उनका उपदेश हम भगवतम के साथ स्कंद में प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान माता के गर्भ में प्राप्त किया था। तो प्रहलाद महाराज ने अपने साथियों को उपदेश देते हुए कहा, कौमारा अचल प्रज्ञ, कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आज हम सुनते हैं कि लोग दुखी हैं क्योंकि हमारे सारे नेता करप्ट हैं, चोर हैं, ये हैं, वो हैं। इन सब का कारण क्या है? कारण ये है लोग, लालच। लालच क्या? लालच और संपत्ति बना लो, और संपत्ति बना लो। इतनी संपत्ति बना ली है कि आगे 100 पीढ़ी तक किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। जब भी और कमाओ और कमाओ। हम भूल जाते हैं कि श्री जो है स्थाई है, और कर्मों के अनुसार हमारा भविष्य निर्णय किया जाएगा। तो आप सब जो भारतीय युवक हो, आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपने छोटी आयु में ही आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ किया। श्री प्रभुपाद जो कि संत के संस्थापक के आचार्य हैं, उनके गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया था कि ले जाओ महाप्रभु का जो संदेश है, वैदिक साहित्य का जो संदेश है, इसे बचाओ पश्चिम देशों में। और प्रभुपाद जी ने लगभग 35 साल अधिक प्रयास करके बड़ी कठिनाई के साथ अमेरिका पहुंचे, और वहां उन्होंने पहले केंद्र की स्थापना की, और आस्ते आस्ते यह आध्यात्मिक क्रांति विश्व के हर कोने में पहुंच गई है। और आज आपको खुशी होगी जानकर कि सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अधिक प्रयास से ग्रंथों का अनुवाद किया। क्या कारण है? ग्रंथों में है भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, और तात्पर्य में है माना महान आचार्य की व्याख्या। तो जब हम भगवान के संदेश को पढ़ेंगे तो उसके द्वारा आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न हो सकती है, और हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का क्या आदेश है हम सब के। हम सरकार का आदेश मानते हैं, माता पिता का आदेश मानते हैं, बड़ों का उपदेश मानते हैं, पर हमें परम भगवान का उपदेश मानना चाहिए। परम भगवान का उपदेश आपको प्राप्त होता है वैदिक साहित्य में खास करके श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता में। तो आप सब अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि आप सबके हृदय में भक्ति का बीज प्राप्त हो गया है। ब्रह्मांड प्रमित गुरु भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति लता भी चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं उपदेश दे रहे थे रूप और सनातन गोस्वामी को। रूप और सनातन गोस्वामी भाई थे भौतिक दृष्टि से और उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में और उस समय भारत की आबादी तो लगभग हिंदू थी। तो चापलूसी करके एक नवाब हुसैन शाह बंगाल का राजा बन गया था और उसने जबरदस्ती इन दो भाइयों को छोड़ा राज्य के शासन में क्योंकि प्रजा लगभग हिंदू थी। तो ज्यादा देर ये दो भाई नहीं रहे राजा के साथ और महाप्रभु की सेवा में जुड़ गए और महाप्रभु ने इन दो भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी जो आप चैतन्य चरितमृता नाम के ग्रंथ में प्राप्त करते हो। तो महाप्रभु ने कहा अनेक योगों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ है भक्ति की महिमा समझना, भक्ति की आवश्यकता समझना। और ये भक्ति का बीज कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे आज के श्लोक में। जिस प्रकार भौतिक स्थिति में अगर कोई मौका मिले आपको धन या अच्छा सौदा करने का तो आप इसको छोड़ते हो नहीं, आप तुरंत उसका लाभ उठाते हो। तो उसी प्रकार ये तो भक्ति का बीज आपको प्राप्त हुआ है। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कीमत भी भरनी पड़े भरो पर इस भक्ति के बीज को हाथ से मत फिसलने दो। तो आप सब यहाँ आए हो इस उत्सव में और इस उत्सव का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि आप सबके हृदय में भक्ति भावना बढ़े क्योंकि जब आप भौतिक समाज में रहते हो एक तरफ से तो प्रयास रहता है भक्ति का और दूसरी तरफ से माया का भी प्रयास रहता कि नहीं रहता? माया का प्रयास क्या रहता है? आपको कैसे विचलित किया जाए, आपको कैसे ये भाव दिया जाए, क्या आवश्यकता है ये भक्ति की? अभी तक तुम जवान हो, जवान का क्या आप भक्ति के लिए कभी बूढ़े नहीं होते। दूसरे शब्दों में अगर वो 70 साल की आयु में भी कोई भक्ति के रास्ते में जुड़े तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, इतनी जल्दी सरकार ने आपको रिटायर कर दिया 60 साल की। भक्ति के लिए आप जवान हो, समाज के लिए बूढ़े हो, भक्ति के लिए जवान हो। तो भक्ति कब करनी चाहिए? जब आप आधे अंधे हो जाओ, आधे अंधेरे, आधे लंगड़े, जब कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, जब माला का जाप करो, जब वृंदावन में जाओ और जब तक शरीर में थोड़ी योग्यता है दुनियादारी करो। ये है मूर्खों का भाव। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो कहते हैं ओ गॉड इज रेयर ह्यूमन बर्थ, बड़ी कठिनाई से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, चारों तरफ में देख सकता हूं क्लेश ही क्लेश। हजारों साल पूर्व यमराज ने युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज धार्मिक राजा थे, पूरी प्रजा को अपनी औलाद समान पालते थे। प्राचीन समय में समाज का शासन किया जाता था उन राजाओं के द्वारा जो एक तरफ से राजा थे दूसरे तरफ से ऋषि थे, तो उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। और ये जो राज ऋषि थे प्रजा को अपनी औलाद समान पालते थे। एक समय एक राजा था बड़ा दयालु जिसका नाम था महाराज सिंह। देवताओं ने निर्णय किया ये राजा बड़ा दयालु है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो एक देवता बन गए कबूतर, दूसरा देवता बन गया बाज। तो कबूतर भागा भागा आया राजा के पास, उछाओ 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 ये बाज मुझे खाना चाहती है। अब राजा हो आपका कर्तव्य है पूरी प्रजा की सुरक्षा हो। जब राजा प्रजा शब्द उपयोग करते हैं पूरी प्रजा को गिनते हैं मनुष्य योनी और पशु की। तो थोड़ी देर बाद वो बाज अंदर आ गई। बाज ने कहा यहाँ कोई कबूतर आया है? राजा ने कहा हाँ मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए। नहीं मुझे उसका मांस खाना। तो राजा ने ये कहा तो मेरे शरीर का मांस ले लो उस कबूतर के मांस के बराबर। और देवता क्योंकि राजा की परीक्षा ले रहे थे कबूतर का वजन बढ़ते गया और राजा अपने शरीर से चमड़ा देते गया उसके वजन के बराबर। और अंत में देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना शरीर स्वरूप प्रस्तुत किया और राजा के शरीर के साथ सारा चमड़ा जोड़ गया। ये एक उदाहरण दे रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि प्राचीन समय के जो नेता थे कितने धार्मिक थे और इसलिए पूरी प्रजा भी सुखी थी। आज आप देख रहे हो अनेक प्रकार के क्लेश, एक तरह से सूखा अकाल पहाड़ और तनाव चिंता बढ़ती जा रही है घट रही है बीमारियां। आज आप दिल्ली में कितने 7-star हॉस्पिटल देखते हो, है कि नहीं? 5-star भी नहीं 7-star। मुझे कोई कह रहा था कुछ दिन पहले कि गुड़गांव में मैक्स हॉस्पिटल में एक नया स्वीट बना रहे हैं, महाराजा स्वीट एंड महारानी स्वीट, और उसका किराया होगा 1,00,000 रुपए दिन का। तो आप देख रहे हो हॉस्पिटल की संख्या बढ़ते जा रही है और किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाओ ऐसी भीड़ होती है जैसे मक्स का हॉस्पिटल। और कारण क्या है? ये भौतिक वातावरण और भौतिक इच्छाएं, इनके कारण तनाव चिंता इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। तो आज समाज में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता। यामराज ने पूछा युधिष्ठिर ये बताओ तुम बड़े ज्ञानी हो बड़े फिलोसोफर हो, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक चीज़ आश्चर्य की क्या बात है? युधिष्ठिर ने बहुत सोचा फिर कहा हर पल हर मिनट हजारों 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 लोगों की मृत्यु हो रही है पर हम क्या सोचते हैं हमारी मृत्यु नहीं होगी, होगी भी तो हमारे से पूछकर ये तो सब जानने के मृत्यु जरूर होगी पर कोई जल्दी नहीं है हमारे से पूछकर। जब हम इजाजत देंगे जब मृत्यु आएगी। एक समय एक वकील की मृत्यु आ रही थी, इस वकील ने यामराज जी से कहा यामराज You cannot take my life so fast. I'm aging in the jaldi nahi le sakte. You did not give me any notice. Aapne mujhe koi suchna nahi bheji ki mrityu aane wali hai. Kyunki aap jante ho vakil kaise kaam karte hain. Pehle notice bheje. 15 din mein ye karo nahi to ye ho jayega. Dhamki de rahe hain. Yamraj ne kaha कौन कहता है मैंने तुमको नोटिस नहीं दिया? आज तुम्हारे सिर में बाल कौन से रंग के हैं? मैं तो गंजा हूं। 20-30 साल पहले कितने बाल थे? पूरे बाल थे। कौन से रंग के? काले। आज कितने दांत हैं तुम्हारे पास? कोई भी नहीं, सब नकली। 25 साल पहले कितने थे? पूरे 32। तुम्हें दांत भी गए। आज सुनने की क्या योग्यता है? आई एम ऑलमोस्ट डेफ, लगभग मैं बहरा हो गया हूं। तो 25 साल पहले कितने हैं कि क्या योग्यता थी? परफेक्ट। आज देखने की क्या शक्ति है? लगभग अंधा। 30-40 साल पहले कैसी थी? बिल्कुल बाल जैसे। तो कैमरा ने कहा मैंने तुमको कितनी नोटिस दिया तुम्हारे दांत गिरते गए, तुम्हारे बाल सफेद होते गए, तुम्हारी सुनने की शक्ति कमजोर होते गई, पांव की शक्ति कमजोर होते गई, और तुमने सब नोटिस इग्नोर कर दिया। तुमने कहा अभी मीठे आएंगे। तो हम सबको हर कदम पर नोटिस मिल रहा है, पर जिस वातावरण में हम पल रहे हैं उस वातावरण में हमें यह समझाया जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति। हाँ, और जब हम पढ़ाई के लिए कोर्सेज भी चुनते हैं, आप क्या देखते हो? बुरा नहीं मानना, क्या देखते हो? कौन सी फील्ड में ज्यादा कमाई है? हमारे एक डॉक्टर ने, उनके पास में गया था कुछ महीने पहले, तो उनका बेटा मेडिकल स्कूल में जा रहा है। तो मैंने पूछा आप मेडिसिन की कौन सी ब्रांच बेटा पढ़ेगा? कहता है ही बी एन आई डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? कहा देयर इज ऑल द मनी इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। सारा धन वहां। क्यों? लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। कंप्यूटर। तो आज हर व्यक्ति ये सोच रहा है अधिक से अधिक धन कमाया है, किस मार्ग द्वारा प्राप्त हो गया, ठीक है ना? और धन क्यों चाहिए हमें? आप कहोगे स्वामी जी आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप धन को छूते भी नहीं। तो धन क्यों चाहिए हमें? बहुत ही सब इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर धन चाहिए हो भगवान की सेवा के लिए, फिर उसमें कोई इच्छा नहीं। हमें धन चाहिए किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए, बहुत ही सब के लिए। पर क्या किसी हालत में भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हो? मान लो आपको हर प्रकार का सुख मिल जाए, धन, आपका व्यापार अच्छा जा रहा है, खूबसूरत शरीर, खूबसूरत पत्नी बच्चे इत्यादि, ये क्या हमेशा तक रहेगा? हाँ नहीं। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी से कोई बच सकता है? आप कितना भी प्रयास करो रोग पीड़ा से बच सकते हो? नहीं। इसके अलावा तीनों प्रकार के क्लेश, आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश, मन द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट और प्रकृति द्वारा कष्ट। इसलिए भगवद गीता में परम भगवान कहते हैं, परम भगवान की वाणी में कोई कमी है? श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। इस विश्व में सबसे प्राचीन ज्ञान है भगवद गीता का ज्ञान। भगवद गीता के चौथे अध्याय में आपको गीता का इतिहास प्राप्त होता है, जहां भगवान कहते हैं कि मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवास को। तो अर्जुन ने पूछा मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता को, जब वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं थी, पर अर्जुन को पता था कि भविष्य में कोई व्यक्ति कह सकता है, अरे गीता में भगवान कहते हैं उन्होंने विवाह स्वर को सूर्य के देवता को ज्ञान दिया, फिर मानव को, फिर इक्ष्वाकु को कहो, ये तो भगवान से पहले प्रकट हो गए थे। भगवान ने उत्तर में कहा, बहुत बहुत बार तुम और मैं प्रकट हो चुके हैं, पर मैं सब जन्मों को याद कर सकता हूँ और तुम नहीं। और गीता का जो ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, और इसका आगे अनुवाद 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका है और लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? कि गीता में है शांति का संदेश। तो गीता में भगवान कहते हैं तो खा ले हम शाश्वत, ये भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश और हर चीज अस्थाई। तो परम भगवान जो उपदेश दे रहे हैं ये हमारे सुधार के लिए। तो आप सब जो जुड़े हो भक्ति योगियों के साथ, जैसे मैंने कहा अत्यंत भाग्यशाली हो। भगवान ने गीता में क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु क्लेशो मम अनुस्मरणे विचार, हे अर्जुन मंगल बुद्धि को मेरे चरणों में अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। दूसरे शब्द में तुम अपने भौतिक कर्तव्य को निभाओ और मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करो। तो कृष्ण भक्ति स्वीकार करने का अर्थ क्या है? उसका ये अर्थ नहीं कि हम सबको धंधा नौकरी पढ़ाई छोड़कर केवल साधु बन रहे। इसका ये अर्थ है कि आप अपनी चेतना को शुद्ध बनाओ। हमारी चेतना इस समय अशुद्ध है। हमारी ये चेतना काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य से प्रभावित है, और हमारे मन में यही भाव है किस प्रकार इन भौतिक इच्छाओं को हम पूरा करें। और कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? अब ये स्वीकार करो कि हमें भगवान के उपदेश के अनुसार चलना है। जिस प्रकार साधारण समाज में अपने स्वास्थ्य के लिए अगर कोई कार्य अनुकूल हो तो उसे आप स्वीकार करते हो या नहीं? अगर प्रतिकूल हो तो स्वीकार करते हो? अगर कोई आपको कहे इस भोजन में एक गुण जहर का है, आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। तो उसी प्रकार हम सबको शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार ये निर्णय करना चाहिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और ये कैसे समझोगे? इसके लिए साधु संगत की आवश्यकता है। शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्वसाधकाय, साधु संगत सर्वसुधियाय। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। इसलिए आप सब जो IIT दिल्ली YMCA गाजियाबाद मेरठ नोएडा फरीदाबाद गुड़गांव लक्ष्मीनगर सहरसा विवेक ओखला मुखर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी सहारनपुर अमेठी अलग अलग स्थानों से आए हो, आपने अनुभव किया होगा कि सुंदर गोपाल प्रभु की सेना हमेशा प्रयास करती है क्या आपको क्या देने के लिए, साधु संगत देने के लिए। ये जो उत्सव जो आज किया जा रहा है उसका भी यही उद्देश्य है, आपके लिए संगत दी जाए। और संगत का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? इंग्लिश में कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अब व्यक्ति को पहचानते हो अपनी संगत के द्वारा। तो आप सब जो भक्ति में जुड़े हो, अक्सर के पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, क्योंकि आपके संस्कार ऊंचे थे अच्छे थे, भगवान ने आपको प्रेरणा दी कि आपको हरि नाम स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने आपको प्रेरणा दी कि आध्यात्मिकता को अनुकूल करना चाहिए। क्या कारण है? हम तो सबसे प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, पर सब नहीं कर पाते। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, जहाँ की किसी रिपोर्टर ने पूछा, उसने कहा, इफ योर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो परफेक्ट, व्हाई इज दिस हॉल फुल्ली पैक्ड एंड पीपल ग्रेट क्रैशिंग टू कम इन। उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण भक्ति इतनी अच्छी है, यहाँ तो लाखों लोग होने चाहिए, क्या कारण है लाखों लोग नहीं है? तो पापा जी ने कहा कि when you're selling gold, only few will buy. आप सब इसलिए अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि आप सब भक्ति के मार्ग में जुड़े हो। ये है असली सोना। आजकल मैं सड़कों में देखता हूँ ये नया शो फिर से आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ 5-10 साल बाद वो शुरू हो जाता है। तो हर व्यक्ति जुड़ेगा, शायद मैं करोड़पति बन जाऊं। आप सब बन रहे हो अरबपति। आप सब असली सोने के पीछे हो, नकली सोने के पीछे नहीं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप बहुत एक कार्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन को भी जोड़े। और जैसे मैं कह रहा था, माया का सदा प्रयास रहेगा आपको विचलित करने के लिए, पर आप सर्दी के मौसम में कैसे बचाते हो अपने आप को सर्दी से? गर्म कपड़े पहनकर। और गर्मी के मौसम में गर्मी से कैसे बचते हो? पंखा एयर कंडीशनर चलाकर। उसी प्रकार माया से बच सकते हो अगर आप आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग करो। भगवान गीता में कहते हैं, देवी शगुन माई भव माया दुर्गतया। इस माया का विरोध करना बड़ा कठिन है, अगर कोई मेरी शरण में आता है तो इस माया को विरोध कर सकता है। तो भगवान की शरण हम कैसे आए वो आप जानना चाहते हो? हाँ ठीक है। तो इस विषय में हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय को 14वां श्लोक आपको पढ़कर सुनाएंगे। ये इस श्लोक की संस्कृत बड़ी सरल है, अगर आप चाहो तो मेरे पास दोहरा सकते हो। तस्मा मनसा भगवान सात्वता पाति श्रोतव्या कीर्तित अव्या चा देह पूज्य नित्यदा तस्मादकेन मनसा भगवान सार्वतां पति श्रोतव्या कृतिर्व्यश्च हेयं पूज्यश्च नित्यदा। मेरे ख्याल से आप सब संस्कृत के पंडित हो, अक्सर हम श्लोक को बोर्ड में लिखते हैं और वो देखकर लोग उच्चारण करते हैं, पर आप सुनने एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर लिया। तो एक बार फिर से करते हैं। तस्मान कीन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तिदव्यश्च इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है।
अनुवाद, अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवन के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की एक विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माध्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा।
मेरे बात अनुवाद दोहराओगे? अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो कौन है हमारा असली रक्षक? हमारा बैंक बैलेंस, हमारे देश के हथियार नहीं, असली रक्षक हैं राम भगवान। और कहा गया है शास्त्रों में, राखी कृष्ण वाले के माने कृष्ण राखी, जिसको भगवान बचाना चाहे उन्हें कोई मार नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं अगर हम हरि नाम में समय देंगे, ध्यान कार्य में समय देंगे, इसी समय के साथ हम दुगना धन कमा सकते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, आप जब भगवान की सेवा में जुड़ोगे तो आपको उसका हजार गुना लाभ मिलेगा। एक समय एक औरत सेब बेच रही थी, सेब बेचते बेचते भगवान के घर में पहुंची। भगवान अपने छोटे हाथों में थोड़े दाने लेकर अन्न वो सेब लेने आ रहे थे, और वो सेब वाली तक पहुंचते तक सारे दाने हाथ से गिर गए थे। जब भी उस औरत ने बड़ी प्रभावित हुई भगवान की खूबसूरती से, उसने सेब दे दिए। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो क्या देखा, उनकी टोकरी में क्या थे, सोने के सेब। तो उसी प्रकार भगवान की सेवा में जुड़कर कोई व्यक्ति गरीब नहीं बनता, कोई कुछ किसी का कुछ नुकसान नहीं होता। तो परम भगवान भक्तों के रक्षक हैं। और इस विषय में भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम पूरे विश्व को सूचना दो। क्या क्या सूचना दो? मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। कौन के जाने ही नहीं भक्त भगवान खुद भी कह सकते थे। भगवान ने कहा मेरा भक्त है तो ज्यादा लोग विश्वास करेंगे। जैसे आप देखते हो आजकल कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेट स्टार कहता है खरीदो इस चीज को, आप सब खरीदने जाते हो, ठीक है। हालांकि हमें पता है उस आदमी ने 10 करोड़ लिया कहने के लिए, लेकिन भी हम इतना विश्वास करते हैं कि हम खरीदने जाते हैं। तो इनको ये आइडिया शायद भगवत गीता से मिला है। तुम सारे विश्व को ये सूचना दो कि मेरा जो भक्त है कभी भी नष्ट नहीं हो। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान हम सबको बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले ये स्थापित कर रहे हैं कि परम भगवान सबके असली रक्षक हैं। श्रीमद् भागवतम में सबसे ऊंचा का ज्ञान है निगामक अवग्रोह कलितम फलम, और ये उपदेश पहले शिवदेव गोस्वामी जी ने दिया था एक सम्राट को जिनका नाम था परीक्षित महाराज, जिनको सूचना मिली थी कि 7 दिन के पश्चात आपका अंत आ जाएगा। और परीक्षित महाराज ने उस समय के उपस्थित संतों को निमंत्रण दिया और सबसे एक प्रश्न पूछा जो हम सबको पूछना चाहिए। क्या था वो प्रश्न? जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे तो आज सबका अंत आने वाला है या नहीं? पक्का? इंग्लिश में कहते हैं कोई चीज को बोलना हो ना सर्टिनिटी के साथ, हम क्या कहते हैं एज श्योर एज डेथ, है ना। जैसे मृत्यु पक्की है 100%। एक समय हमारे गुरु जी अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अमेरिका में एक रिपोर्टर आया, अमेरिकन रिपोर्टर, हाँ, स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी यू कम फ्रॉम अ वेरी पुअर कंट्री, आज तो भारत का थोड़ा नाम विश्व में थोड़ा बढ़ गया है, और 25-30-40 साल पहले तो लोग क्या सोचते थे, भारत भिखारी देश है ना। तो वो कहने लगा यू कम फ्रॉम अ वेरी पुअर कंट्री स्वामी जी, we are the richest country in the world। उन दिन में अमेरिका को विश्व का सबसे धनी देश माना जा रहा था, आज नहीं मानते लोग। तो आप हमें क्या उपदेश दोगे? आप गरीब देश के व्यक्ति हो, हम अमीर देश के, हाँ हम अमीर देश में क्या उपदेश दोगे हम? तो प्रभुपाद ने कहा one thing is common to your country and my country, so he said what is common to me? We are so rich, you are so poor, how can we have anything in common? Prabhupada said, the death rate in both countries is 100%. So Prabhupada ne kaha ki, usne kaha, hum itne dhani desh ke vyakti hain, aap gareeb desh ke ho, ab hume kya updesh doge? So Prabhupada ne kaha, chahe to hum dhani desh ke ho, main gareeb desh ke ho, एक चीज कॉमन है दोनों देशों को। तो इस जर्नलिस्ट ने बड़ी जिज्ञासा दी, क्या है क्या है, हमारे अमीर देश वो गरीब देश है। तो हमने कहा डेथ रेट इज 100%, सो दैट इज श्योर, सो डेथ रेट इज 100%। तो भगवान जो ये उपदेश दे रहे हैं ये हम सब के लिए है। भगवान कह रहे हैं हमें 4 कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। एक है श्रवण, दूसरा है क्या, तीसरा और चौथा, केवल 4 चीजें। ये नहीं कि बड़ी लिस्ट है 50 चीजों की, श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम का अर्थ है सुनना, कीर्तनम का अर्थ है भगवान के नामों का उच्चारण। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में दोष ही दोष है। एक समय परीक्षित महाराज ने पूछा शुक्रदेव गोस्वामी से कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? जो भगवान के भक्त हैं, वो समाज के असली शुभचिंतक हैं। उनकी इच्छा है कि समाज के लोग सुखी बने। तो उन्होंने पूछा कि समाज में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कलयुग में दोष ही दोष है। प्रेम कौन है इस कलयुग में? वो क्या है? कृष्णा का किरण। तो हमारे शास्त्र में ये नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र की महिमा श्री प्रभुपाद जी ने स्थापित की है, ये नहीं कि केवल इसका में हरे कृष्ण बोलते हैं, बाकी संस्था में हरे कृष्ण बोलते हैं। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है क्या कि ये हरि नाम एक माध्यम है भगवान के शरणागत होने के लिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में एक पार्क है जिसका नाम है टॉमकिन स्क्वेयर पार्क। प्रभुपाद जी भारत से निकले थे 40 रुपए के साथ और एक मृदंगा साथ ले गए थे। तो टॉमकिन स्क्वेयर पार्क में एक पेड़ है जिसके नीचे प्रभुपाद जी बैठते थे और प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा का कीर्तन शुरू किया। अस्से से लोग आने लगे और ये संस्था बढ़ते गई सारे विश्व में। आज अगर आप टॉमकिन स्क्वेयर पार्क में जाओगे, वहाँ बहुत बड़ा प्लैक है जिसमें लिखा है, दिस इज अ ट्री अंडर विच द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड हिज मूवमेंट। बाबा जी का बुरी उम्र में गए थे पर से भी हरि नाम को ले गए थे। तो इसलिए जब हमारे मन के भक्त आपके बेस में आते हैं, आपके कॉलेजेस में आते हैं, आपसे विनती करते हैं क्या, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। जब प्रभुपाद जी ने संस्था शुरू की थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स विश्व का एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, उसमें एक कार्टून निकला था। उस कार्टून में दो मित्र थे, एक मित्र दूसरे को कह रहा था चैन चैन चैन, दूसरा कह रहा था कैन कैन कैन। आप समझ गए हिंदी में अनुवाद करना मुश्किल है। एक कह रहा था झक करो झक करो झक करो, दूसरा कह रहा था नहीं नहीं नहीं। तो भाई सदा ये निवेदन करते हैं, प्लीज चैन प्लीज चैन प्लीज चैन। और आप सबका अनुभव है जब आप जाप करते हो तो आपकी भौतिक इच्छाएं भी वश में रहती हैं। सच बात है, जब आप जाप नहीं करते तो क्या अनुभव करते हो? भौतिक इच्छाओं के भाव बढ़ते जाते हैं। सच बात है, पर हम सोचते हैं इस मार्ग में हमें जुड़ना चाहिए भौतिक आदमी। तो भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को भौतिक वातावरण से बचा सको। वो कह रहे हैं श्रवणम और कीर्तनम। भगवान ने हमें एक जीव दिए, दो कान दिए हैं। इस जीव का हमें सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं। आजकल हम सारा दिन सेल फोन में लगा देते हैं कि नहीं? आज लोगों को सेल फोन से इतना प्रेम है कि कई लोग सोते भी हैं टेलीफोन के साथ। तो जीव द्वारा हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। आप में से कई भक्त हो जो 16 माला का जाप करते हो। आप में से कितने भक्त हो जो 16 माला का जाप करते हो? अच्छा, कई हो जो कि 8 है, 8 से ज्यादा 16 से, 8 और 16 के बीच में कितने हो? और 2 और 8 के बीच में और बिल्कुल माला नहीं। तो आप ऐसे कई भक्त जो 16 माला का जाप कर रहे हैं, कई 16 से कम, कई ने माला में जब अब शुरू किया होगा तो आपका अनुभव होगा कि जब आप जाप करते हो तो आपको एक पॉजिटिव आनंदी अनुभव होता है, सच बात है। भगवान कहते हैं आनंद बुद्धि वर्धन। कई बार लोग पूछते हैं हम जाप करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? एक लाभ है हृदय शुद्ध होता है, दूसरा लाभ है आपको असली आनंद अनुभव होता है। और इस माला के जाप के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। तो भगवान ने हमें ये सरल साधन दिया है। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था चिंतन करना भगवान का, त्रेत युग में भगवत प्राप्ति का साधन था महंगी महंगी भेंटों को अर्पण करना भगवान के सेवा। तो आप त्रेत युग में साधन था बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध वस्तु की आवश्यकता थी। द्वापर युग में साधन था भगवान के चरणों में महंगी भेंटों को अर्पण करना, पर कलयुग में क्या साधन है? भगवान के नामों का उच्चारण। चेती ने महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी को याची जत नगर का जितने नगर हैं गांव हैं पृथ्वी में हर जगह क्या होगा, ये हरि नाम होगा। तो आप सबसे निवेदन है अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े रहना चाहते हो तो माला का जाप किसी हालत में मत छोड़ो, ये भक्तों के लिए सबसे आवश्यक सेवा है। शुरू में जब हम सुनते हैं सोलह माला का जाप, हम कहते हैं सोलह माला इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सच बात है। पर जब आप एक बार जाप करना शुरू करो तो आपको क्या लगता है, ये इतना कठिन है? नहीं है। तो भगवान अपने नामों में प्रकट होते हैं, काली काली नामा रूपा कृष्णा होता भगवान प्रकट होने उनके नामों के द्वारा। भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है, आदि में वह नामों में भगवान में कोई अंतर नहीं। तो आज सबसे निवेदन है ये हरि नाम को मत छोड़िए, हरि नाम को जीव के साथ जोड़िए। एक महान संत ने कहा है अगर हमें किसी चीज की भीख मांगनी है तो हमें हरि नाम की भीख मांगनी चाहिए। और हरि नाम की भीख आप कैसे मांगते हो? हरि नाम का उच्चारण करके। और इसके अलावा मैं कहा क्या कि कहा गया है स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के उपदेश का स्मरण करो, भगवान की इच्छा का स्मरण करो। और पूजन, भगवान अपने आप को आर्चर विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और इस आर्चर विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन सरल है, आपको साथ में नियमों के विषय में चर्चा की जाती है। ये जो चार नियम हैं जब हम इनका पालन करें ये भक्ति के खंभे बन जाते हैं, और जब इनका पालन हम नहीं करें ये पाप के खंभे बन जाते हैं। तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आपके हाथ में असली सोना आया है। वैसे तो अनेक धर्म के प्रचारक हैं और कईयों के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हमें ये देखना है कि जो उपदेश दिया जा रहा है इस शास्त्र पर आधारित है या नहीं। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जो कि संस्था के संस्था के आचार्य हैं, उन्होंने 100% हमें वही उपदेश दिया जो शास्त्र पर आधारित है। और अगर हम शास्त्र के आधार पर चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। एक महान संत ने कहा है भक्तियों के मार्ग में अगर आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे आप गिरोगे नहीं, क्योंकि भक्ति योग में केवल लाभ ही लाभ है। तो आप सब किसी हालत में भक्ति से जुदा मत होना। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में प्रयास किया जाता है कि आप भक्ति से जुदा हो जाओ। हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं भक्ति की क्या आवश्यकता। सच बात है। और भौतिक मित्र भी कहेंगे भक्ति की क्या आवश्यकता। तो भक्ति ही असली चीज है। और शास्त्र में कहा क्या है, कदम कदम पर क्या है, खतरा है। तो आप सबसे निवेदन है कि माला का जाप जरूर कीजिए, और जितने ध्यान से माला का जाप करोगे उतना ही अधिक लाभ भी आपको पहुंचेगा। तो कृष्ण भक्ति है पूरे समाज के लिए। तो आप सबके हम आभारी हैं कि आप इधर आए हो इस उत्सव में। इस सुंदर गोपाल के भक्तों का भी आभारी हूँ कि वो प्रयास करते रहते हैं आप सब लोगों को भक्ति का भाव, भक्ति का उपदेश देने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारतवासी खास करके अपनी संस्कृति को नहीं भूले। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, उन्होंने कहा है भारत भूमि में रहेगा सुनिश्चित मेरा। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे क्या करना चाहिए, अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार। तो आप सब इस शिक्षक को समझे ध्यान से, और इस शिक्षा को पहुंचाओ विश्व के कोने कोने में। क्योंकि अगर आप असली सुख शांति चाहते हो तो यही है एक उपाय। और भौतिक पढ़ाई के साथ भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करना चाहिए। और अगर आप दोनों को अनुकूल करोगे तो आपके जीवन सफल होगा। अगर हम केवल भौतिक ज्ञान को अनुकूल करें और आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाए तो समाज में देखोगे तो आज आप अनुभव कर रहे हो। ऐसे तो कई लोग हैं पीएचडी डिग्रीज के साथ, उनका जो आचरण है बिल्कुल पशुओं के समान। तो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिएगा। भगवान ने इस श्लोक में बड़ा सरल उपदेश दिया है जिसका हम सब लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।